वैसे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हर धर्म में किसी न किसी एक वर्ग का कट्टरवाद और चरमपंथ की ओर झुकाव हो जाता है। ये केवल इस्लाम धर्म की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के ज्यादातर धर्मों में कुछ इस तरह की स्थिति पाई जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आतंकवाद का जन्म कैसे हुआ और इसको इस्लाम धर्म से ही जोड़कर क्यों दुनिया के सामने पेश किया जाने लगा। तो इसके बहुत सारे जवाब हैं जिन सब का यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन एक दो पहलुओं को हम बयान करने का प्रयास जरूर करेंगे। दुनिया में जैसे जैसे मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का विकास तेज होता गया, वैसे वैसे मुसलमानों के खिलाफ साजिशें भी तेज होती गईं। इन दोनों की रफ्तार को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दोनों को किसी एक ही मशीन के जरिए चलाया जा रहा है, क्योंकि इस्लाम धर्म दुनिया में फैलने वाला सबसे तेज धर्म माना जाता है। इस्लाम से पहले बहुत सारे धर्म थे, लेकिन उन सारे धर्मों के बाद दुनिया में आने वाला ये धर्म आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। वहीं ऐसा माना जाता है कि मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेट के वजूद में लाने वालों ने जब ये देखा कि बिना किसी प्रचार प्रसार और बिना किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के जब इस्लाम धर्म इतनी तेजी से फैल सकता है, तो फिर जब आधुनिक दुनिया के ये प्लेटफॉर्म इसे मिल जाएंगे तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान बचे जो इस्लाम धर्म को स्वीकार न करे। इन तमाम बातों को दिमाग में रखते हुए मुसलमानों के खिलाफ ऐसी साजिशें रचने की योजनाएं बनाई गईं कि जिससे मीडिया और सोशल मीडिया जहां पूरी दुनिया में छा जाए, वहीं साथ में आम लोगों तक ये भी सोच पहुंचे कि इस्लाम और मुसलमानों का संबंध आतंकवाद और कट्टरवाद से है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में जिस व्यापकता से सोशल मीडिया का चलन हो चुका है, उसी तरह इस्लाम को बदनाम करने वाली सामग्रियों की भरमार भी इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। पिछले एक दशक से ज्यादा समय से एक नाम पूरी दुनिया में छाया हुआ है और वो है तकफीरी आतंकवादी गुट दाइश का नाम। पश्चिमी एशिया क्षेत्र की स्थितियों, विशेष रूप से गजा में युद्ध और प्रतिरोध से ज़ायोनी शासन की हार और भारी क्षति को ध्यान में रखते हुए शुरू से ही अवैध ज़ायोनी शासन के मुख्य समर्थक के रूप में अमरीका को देखा जाता रहा है। अवैध ज़ायोनी शासन के वजूद में आने से लेकर आज तक अमरीका किसी भी स्तर पर जाकर इस अवैध शासन को पश्चिमी एशिया में बनाए और बचाए रखना चाहता है। उसके लिए उसने सीरिया, इराक और लेबनान को सबसे पहले निशाना बनाया और साथ ही साथ ईरान तो उसके सबसे बड़े टारगेट में से है ही। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि जिससे पता चलता है कि अमेरिका ने प्रतिरोध की धुरी का सामना करने के लिए तकफीरी आतंकवादी समूह दाइश की स्थापना और उसके फलने फूलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इराक और सीरिया और फिर अफगानिस्तान में दाइश की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए वाशिंगटन ने निरंतर प्रयास किए हैं। कथित तौर पर पश्चिम के नेता के रूप में अमेरिका ने अपने पश्चिमी और अरब साझेदारों के साथ मिलकर दाइश सहित तकफीरी आतंकवादियों का समर्थन किया और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करता आ रहा है। अगस्त 2016 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहने के दौरान अपने एक चुनावी भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें और चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और पूर्व अमरीकी विदेश मंत्री को दाइश का संस्थापक बताया था। इसके अलावा अमरीकी राजनेता रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जिन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी भागीदारी की घोषणा की है और डेमोक्रेटिक पार्टी में जो बाइडेन के प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं, उन्होंने भी दाइश के गठन में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका को स्वीकार किया है। कुल मिलाकर यह कुछ ऐसा नजरिया है कि जो इस बात की ओर इशारा करता है कि आज पूरी दुनिया में, विशेषकर पश्चिमी एशिया में, तकफीरी आतंकवाद का जो आतंक है, वास्तव में वो आतंकी अमरीका ही है। दुनिया भर में जो भी देश आतंकवाद से जख्मी है, वो जख्म अमरीका का ही दिया हुआ है। हाल ही में ईरान में शहीद कासिम सुलेमानी की शहादत की बरसी के मौके पर होने वाला आतंकवादी हमला और उसमें शहीद होने वाले सैकड़ों बेगुनाह लोगों का वास्तव में कोई मुजरिम है तो वो अमरीका ही है। जरा सोचें, ये कौन लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का गंदा खेल खेल रहे हैं और उससे केवल मुसलमानों को ही नुकसान पहुंच रहा है। आखिर गजा की मजलूम जनता की मदद के लिए इस्लाम के नाम पर कथित तौर पर धमाके करने वाले कहां गायब हो जाते हैं।